आज है अप्रैल महीने की 12 तारीख दिन बृहस्पतिवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दावा किया रासायनिक हमले में सीरियाई सरकार का ही हाथ।
Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant près de 10 jours, des armes chimiques.
उन्नाव और कठुआ बलात्कार मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई तेज।
मन की बात, क्या इनके मन में जो कठुआ में विक्टिम हुई और जो उन्नाव में विक्टिम हुई कुछ भी नहीं आया इस प्रधान सेवक के मन में।
चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाए गए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज फिर जीते स्वर्ण पदक। होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार रजनीश कुमार से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया पर हमला जल्द होगा या तत्काल नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वाशिंगटन में एक अहम बैठक से पहले ट्रंप ने ट्वीट कर ये बातें कही हैं। इस बैठक में अमरीकी रक्षा प्रमुख सीरिया में रासायनिक हमले के जवाब में निर्णायक सिफारिश करने वाले हैं। सीरिया पर अमरीका और फ्रांस के संभावित हमले में ब्रिटेन भी शामिल होने को लेकर बैठक कर सकता है। दूसरी तरफ रूस ने सभी पक्षों से किसी भी सैन्य कार्रवाई से बचने का आग्रह किया है। रूस ने कहा है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से सीरिया में तनाव बढ़ेगा और शांति प्रक्रिया को धक्का लगेगा। रूसी सैनिकों का कहना है कि सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले आखिरी शहर डोमा में भी सीरियाई राष्ट्रध्वज लहरा दिया गया है। पिछले हफ्ते इसी शहर पर रासायनिक हमले की बात सामने आई थी। डोमा और पश्चिमी गूटा में विद्रोहियों की हार को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की जीत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस जीत पर रासायनिक हमले के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उस पर भारी पड़ती दिख रही है। सीरिया डोमा में रासायनिक हमले से इनकार कर रहा है, लेकिन पश्चिम के देशों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। चीन के नेता सुन जेनगसी को अदालत ने सत्ता का दुरुपयोग कर 2,70,00,000 डॉलर जमा करने के मामले में दोषी ठहराया है। सुन जेनगसी को कभी वर्तमान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्तराधिकार के रूप में देखा जाता था। शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का वादा किया है, लेकिन कई लोग शक करते हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर वो अपने प्रतिद्वंदियों को मिटा रहे हैं। सजा मिलने के बाद सुन जेनगसी ने कहा,
मैंने नियमों को तोड़ा है और मुझे जो सजा सुनाई गई है उसे स्वीकार करता हूँ। मैं खुद को कोस सकता हूँ और मैंने ऐसी सजा पाने लायक काम किया है। मैं इस सजा से सहमत हूँ। ये थे चीन के नेता सुन जेनगसी का शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक कारोबार में तेज वृद्धि दर की उम्मीद जताई है, लेकिन संरक्षणवादी नीतियों को लेकर चेतावनी भी दी है। WTO ने कहा कि पिछले साल 2011 के बाद से कारोबार में तेज वृद्धि दर देखी गई थी और इस साल भी ऐसी ही उम्मीद है। हालांकि चीन और अमेरिका में व्यापार को लेकर बढ़ते तनाव पर WTO के महानिदेशक रॉबर्ट अजवेदो ने चिंता जताते हुए इसे बातचीत के जरिए सुलझाने का आग्रह किया है। अफगानिस्तान की पुलिस का कहना है कि तालिबान के चरमपंथियों ने कम से कम 14 लोगों को मार दिया है। मारे गए लोगों में एक जिला प्रशासक भी शामिल हैं। तालिबान ने पश्चिमी प्रांत गजनी के सरकारी परिसर में हमला बोला था। अधिकारियों का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस और अफगानिस्तानी एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें तालिबान के कई लड़ाके मारे गए हैं। गजनी के पुलिस उपप्रमुख रमजान अली मोहसनी ने कहा, भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा के 5 एजेंट ख्वाजा उमारी के जिला प्रशासक और 7 राष्ट्रीय पुलिसकर्मी इस हमले में शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में कम से कम 45 से 50 चरमपंथी भी मारे गए हैं। ये थे गजनी के पुलिस उपप्रमुख रमजान अली मोहसनी के शब्द। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाल के उसके फैसले से अनुसूचित जाति और जनजाति कानून की धार कमजोर हुई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इससे देश को भारी नुकसान हुआ है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर संदीप सोनी के साथ। अमेरिका की सरकार आज ये तय करने वाली है कि सीरिया के डूमा में पिछले हफ्ते जो संदिग्ध रासायनिक हमला हुआ था उसके जवाब में सीरिया में क्या कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने भी आज ही अपने मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। इस बीच रूस का कहना है कि डूमा कस्बे में अब सीरिया का झंडा फहरा रहा है और वहाँ अब कोई विद्रोही नहीं बचा है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में कथित रासायनिक हमले के जवाब में अमेरिका बहुत जल्द सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अपने सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि होने को तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई में कोई जल्दबाजी ना करे, यानी देर सवेर हो सकता है कि जल्दबाजी में कार्रवाई करे और हो सकता है कि कुछ समय रुककर अमेरिका कार्रवाई करे। लेकिन ट्रंप इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका सीरिया में सैन्य कार्रवाई ज़रूर करेगा। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के ही एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में बड़ा दावा किया है।
Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant près de 10 jours,
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कह रहे थे, हमारे पास इस बात का सबूत है कि पिछले हफ्ते रासायनिक हथियारों में क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया था और इसका इस्तेमाल बशर अल असद की सरकार ने किया था। वहीं जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपना इरादा भी जाहिर कर दिया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल कह रही थी कि अमेरिका और फ्रांस जो कुछ भी कह रहे हैं हम उसे बहुत ध्यान से देखेंगे, लेकिन जर्मनी किसी संभावित सैन्य कार्रवाई में हिस्सेदार नहीं बनेगा, फिलहाल यही फैसला लिया गया है। सीरिया में कथित रासायनिक हमले की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ताज़ा तरीन घटनाक्रम फिलहाल इतना ही है। और मैं लगे हाथ एक खबर आपको और बताता चलूं, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों रूस और अमेरिका के बीच तनाव की एक वजह नर्व एजेंट का इस्तेमाल था, जो ऐसा कहा गया था कि रूस ने ब्रिटेन में अपने एक पूर्व जासूस पर किया था। इस मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। bbchindi.com की खबर लेकर मोहम्मद शाहिद स्टूडियो में मौजूद हैं।
नर्व एजेंट हमले की शिकार रूस के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल की बेटी यूलिया स्क्रिपल ने फिलहाल रूसी दूतावास की मदद लेने से इनकार कर दिया है। 33 वर्षीय यूलिया सोमवार को ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता अभी भी गंभीर हालात में हैं। पुलिस की तरफ से जारी किए गए उनके बयान में कहा गया है कि वो अभी भी कमज़ोर हैं और मीडिया को पूरा इंटरव्यू नहीं दे सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कोई मेरे या मेरे पिता की तरफ से बयानबाजी ना करे। रूसी दूतावास ने इस बयान पर आशंका जताते हुए कहा है कि उन्हें शक है कि ये असल में यूलिया का ही बयान है क्या। रूस की इस आशंका के बाद से नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं। यूलिया और उनके 66 वर्षीय पिता चार मार्च को सैलिसबरी में एक पार्क की बेंच पर अचेत मिले थे। दोनों जहरीले नर्व एजेंट की चपेट में आ गए थे। सर्गेई स्क्रिपल अभी सैलिसबरी के जिला अस्पताल में भर्ती हैं। यूलिया ने अपने बयान में कहा है कि एक महीने पहले जो साधारण जिंदगी वो जी रही थी, आज की जिंदगी उससे बिल्कुल अलग है। फिलहाल यूलिया को एक सुरक्षित जगह ले जाया गया है। उन्होंने बयान में कहा है कि उनके साथ विशेष तौर पर ट्रेनी अधिकारी होते हैं जो उनका ख्याल रखने में मदद करते हैं, वही उन्हें जाँच की प्रगति के बारे में भी बताते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी बात की है और उन्हें रूसी दूतावास के कुछ खास नंबर भी दिए गए हैं जिन्होंने उन्हें हर मुमकिन मदद पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त मैं उनकी मदद लेना नहीं चाहती, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं जानती हूं कि उन्हें कैसे संपर्क करना है।
पूर्व रूसी जासूस को जहर देने के मामले में कुछ नए सवाल उठे हैं। bbchindi.com के हवाले से ब्यौरा दे रहे थे मोहम्मद शाहिद। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव बलात्कार मामले में विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार के वकील से यही सवाल किया है। आज इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
चारों तरफ से पड़ रहे दबाव और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद उन्नाव में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में यूपी पुलिस ने विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ केस तो दर्ज किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी। कुलदीप सेंगर और उनके साथियों पर उन्नाव के माठी थाने में बलात्कार के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाएगा, इसे बताने के लिए सूबे के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह और प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार खुद मीडिया के सामने आए। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा,
दोषी नहीं करार किए गए हैं, वो एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जांच, उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अब उसको गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी कि उसे उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना।
वहीं प्रमुख सचिव गृह ने एसआईटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी और ये भी संकेत दिया कि गंभीर धाराओं में एफआईआर के बावजूद कुलदीप सेंगर अभी भी माननीय हैं।
164 सीआरपीसी के बयान में चूंकि उल्लेख नहीं था विधायक जी का, इस वजह से उसमें कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की गई। अग्रेतर कार्रवाई सीबीआई साक्ष्यों को कलेक्ट करके उसके आधार पर करेगी। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा की चिंता को दृष्टि रखते हुए उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
वहीं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और राज्य सरकार के वकील से सवाल किया कि कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी होगी या नहीं। वकील का जवाब था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। बहरहाल हाईकोर्ट ने फैसले के लिए कल का दिन तय किया है, लेकिन पीड़ित लड़की मीडिया के सामने लगातार न्याय की गुहार लगा रही है।
सर, इनको अरेस्ट किया जाए, उसके बाद सीबीआई जांच करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, कराइए तो सर, इनको बचाया फिर क्यों जा रहा है, मैं तो सब चीजों पे मंजूर करती हूँ, तो अब क्यों इनको बचाया जाए।
वहीं राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जगहों पर इस मामले को लेकर सड़क पर हंगामा होता रहा। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस के अलावा आरएएफ की टुकड़ी भी तैनात की गई थी। जुलूस का नेतृत्व कर रही महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद सुष्मिता देव का गुस्सा फूट पड़ा।
हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह इस मुख्यमंत्री को हटाए, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस कुर्सी में बैठने का। आज बीजेपी के एमएलए को चार्जशीट किया है 9 महीने बाद, उनको हटाया आज तक बीजेपी से। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, और स्मृति ईरानी जी कहाँ है, साड़ियां बांटने के लिए उनके पास टाइम है।
न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता, खासकर महिला नेता, इस मामले में मुखर होकर सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़कों तक पर यही चर्चा है कि विधायक कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, जबकि सरकार और पुलिस ने ये जिम्मेदारी भी अब सीबीआई को दे दी है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
उन्नाव की घटना और जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद की राजनीति के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कई महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने वहां जाकर कुछ महिलाओं से बात की।
जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची की जो सामूहिक बलात्कार हो गया, उसका मर्डर हो गया, बहुत दिन हो गया। कल हमने क्या देख रहे, पूरी देश की इतिहास में शायद ऐसा नहीं है। एक रेप होने के बाद जो चार्जशीट फाइल करने के लिए कोर्ट में जा रही है, उसको रोक रही है वकीलों खुद। तो ऐसा एक भयानक सिचुएशन के बावजूद भी देश की प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल रहे। ये रेप और मर्डर को कम्युनलाइज क्यों कर रही है, कौन है इसके पीछे?
कम्युनलाइज की बात कर रहे हो, ये तो स्टेटमेंट्स भी इस तरह से किए गए हैं कि वो लड़की मुसलमान है, जो आरोपी है वो हिंदू है, तो हम हिंदू को बचा
इनके इसके खिलाफ यहाँ पे सड़कों में
नहीं, हम तो इसके खिलाफ उतरे हैं कि औरतों के ऊपर जो हिंसाचार हो रहा है, वो जो गुनहगार है उनको सजा होनी चाहिए, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है।
सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, आपको नहीं लगता कि रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए?
देखिए, बात यह है कि रिपोर्ट का तो इंतजार होता रहेगा, पर अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको, वो क्यों खुले घूम रहे हैं?
उनका कहना है कि साक्ष्य नहीं है।
जून 2017 में हुआ है, ऑलमोस्ट ईयर। आप कह रहे हैं कि चार्जशीट किया, एसआईटी लगा है, सीबीआई है, लेकिन क्या भरोसा है कि ये चलेगा?
कुछ लोग प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं।
जी हाँ, मन की बात में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मन की बात क्या, इनके मन में उस लड़की के लिए जो कठुआ में विक्टिम हुई और जो उन्नाव में विक्टिम हुई, कुछ भी नहीं आया इस प्रधान सेवक के मन में जो लोगों से अपने मन की बात में बता सकते?
ये थी दिल्ली के जंतर मंतर से उन महिलाओं की आवाज जो बलात्कार के विरोध और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही थी। कठुआ मामले में हत्या और बलात्कार से लेकर जम्मू बनाम कश्मीर एक अलग तरह की बात की जा रही है। विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस भयानक बलात्कार और हत्या की घटना को ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश कर रही है। bbchindi.com पर ये विश्लेषण इस समय सबसे ऊपर पहली खबर की शक्ल में लगा हुआ है, आप आकर इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। उधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी को प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए। ये प्रदर्शनकारी कावेरी नदी के पानी और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से खासे नाराज हैं। पूरा ब्यौरा इमरान कुरैशी की रिपोर्ट में।
इस तरह के प्रदर्शनकारियों की आवाज तो चेन्नई में पहले भी सुनने को मिली है, लेकिन जिस पैमाने पर आज का प्रदर्शन हुआ वो शायद 30 साल पहले श्रीलंका के विषय पर तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ ही हुआ था। चेन्नई एयरपोर्ट के पास प्रदर्शनकारियों ने बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और शहर के कई इलाकों में प्रदर्शन किए। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी यानी मोदी वापस जाओ का हैशटैग चर्चा का विषय था। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद डिफेंस एक्सपो के लिए रवाना हो गए। MDMK के नेता वाइको ने पुलिस की गिरफ्तारी से पहले उनके समर्थकों को कहा,
36 इंच बाड़ी बचिकिटे बैलवान ना या मोदी
एक डरपुक है। यहाँ काला झंडा दिखाने से उनको कोई गोली नहीं मार रहा है। मोदी बेनिटो मुसोलिनी जैसे काले झंडों से डर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो रोड पर क्यों नहीं आते, लेकिन वो नहीं आएंगे। ये थे वाइको के शब्द। आखिर किस लिए इतना गुस्सा है तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? चेन्नई के सेफ फूड अलायंस के कन्वीनर हिमाचरण ने BBC को बताया, आज का प्रदर्शन पारंपरिक नहीं है। जल्लीकट्टू के प्रदर्शन के समय से ही तमिलनाडु की जनता नाराज है। कावेरी पानी के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा था कि 6 हफ्तों में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना होना चाहिए, उसके बावजूद केंद्र सरकार कुछ नहीं किया। तमिलनाडु के 12 जिले कावेरी पर निर्भर हैं और अगर ये इलाके में सूखा आ गया तो जनता में शक है कि जमीन में हाइड्रोकार्बन को निकालने के लिए यहाँ कई तरह के फैक्ट्री खुल जाएंगे। ये थे हिमाचरण के शब्द। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के वकील ने कहा था कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड जैसा स्कीम उसने इसलिए स्थापित नहीं किया क्योंकि कर्नाटका में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दोनों राज्यों में कावेरी पानी जज्बाती मामला हो गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ DMK ने प्रदर्शन शुरू किया था और उसका अंजाम ये हुआ कि चेन्नई में IPL के सिर्फ एक मैच के बाद ही BCCI ने कह दिया कि अब चेन्नई में मैच नहीं होंगे। अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता कस्तूरी शंकर कहती हैं,
दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द
तमिलनाडु के लोग बहुत ही निराश हो गए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। हाँ, खेल और राजनीति दूर रहना चाहिए, लेकिन जब पानी का मसला है और हमारा दर्द बढ़ रहा है, मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि तमिलनाडु का हक है पानी पर? ये थे कस्तूरी शंकर के शब्द। तो इस तरह के प्रदर्शन से क्या BJP पर तमिलनाडु में कोई असर होगा? राजनीतिक विश्लेषक S. मुरारी ने कहा, पहले भी तमिलनाडु में BJP को कुछ खास वोट नहीं मिलते थे। वोट का हिसाब लेना है तो BJP को नोटा से थोड़ा ज्यादा वोट मिलते आए हैं और अभी की जो अन्ना DMK की सरकार है और जो BJP के करीब मानी जाती है वो भी चुनाव के समय कुछ खास प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं है। ये थे S. मुरारी के शब्द। मुरारी की बात कुछ मायने रखती हैं क्योंकि तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर सत्तारूढ़ अन्ना DMK सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह रही है, जैसे दिवंगत जयललिता क्या करती थी। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
BBC हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल जारी हैं, जहां से बीबीसी संवाददाता रेहान फजल लगातार ताज़ा खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज राष्ट्रमंडल में क्या कुछ हुआ, खेलों में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए मैंने गोल्ड कोस्ट में मौजूद रेहान फजल से अब से कुछ देर पहले बात की।
आज कुश्ती के मुकाबले शुरू होने के पहले ही दिन भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं। पहले राहुल आवारे ने 57 किलोग्राम में सोना दिलवाया और फिर सुशील कुमार ने 76 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड दिलवाया भारत को। राहुल ने पहले ही राउंड में इंग्लैंड के जॉर्ज रैम को हराकर दिखा दिया कि उनमें बहुत कुछ करने की क्षमता है। फिर उन्होंने पाकिस्तान के बिलाल मोहम्मद और ऑस्ट्रेलिया के पहलवान को भी हराकर फाइनल में प्रवेश किया और फाइनल में उनका मुकाबला कैनेडा के स्टीफन ताकाशाही से था, जो कि मामूली पहलवान नहीं थे। फिर भी जीत अवारे की ही हुई और मुकाबले के तुरंत बाद मैंने उनसे पूछा कि कैसा था मुकाबला।
बिल्कुल टप था। पिछले 10 साल से मुझे इस मोमेंट का इंतज़ार था। मेरे गुरुजी हरिचंद्र विराजदार खुद कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट थे और आज मैं कॉमनवेल्थ का गोल्ड हुआ। इससे बड़ा मेरे लिए सुखद क्षण और नहीं हो सकता जिंदगी में।
सुशील कुमार को 74 किलोग्राम का खिताब जीतने में जरा भी पसीना नहीं बहाना पड़ा। उनका मुकाबला करना तो दूर, चारों पहलवान उनके खिलाफ एक भी अंक नहीं ले सके। फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहानस बोथा को हराया और सिद्ध किया कि उनमें अभी भी कम से कम 3 साल तक की कुश्ती बाकी है। और उधर महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में बबीता कुमारी ने शुरुआती मुकाबले तो जीते, लेकिन फाइनल में कनाडा की डायना विकर उन पर भारी पड़ी।
मुकाबला आपने देखा ही होगा, काफी टफ था, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। आई एम हैप्पी।
लेकिन आपको लगता है कुछ स्वर्ण जीत सकती थी?
बिल्कुल
आप?
बिल्कुल, बहुत ही नजदीक से मैं बाउ उठा रही हूँ और मैं जीत भी सकती थी।
76 किलो में किरण ने पहला मुकाबला तो जीता, लेकिन उसके बाद उनका मुकाबला नाइजीरिया की पहलवान के साथ पड़ा, जिसके पार वो नहीं जा पाई। उन्होंने बीबीसी को बताया,
मेरा पहला कॉमनवेल्थ है, वो मेरे से सीनियर भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो लॉक हो गए। अब फितले बन गए, जैसे हमारे दाव बोलते हैं, फितले, दोनों पैर लॉक हो गए, उसी में स्कोरिंग हो गई, फंस गए हम।
ये तो हुई कुश्ती की बात, ये बताइए कि बाकी और खेलों में भी भारत को आज पदक मिले हैं।
देखिए, महिलाओं की 50 मीटर प्रोन राइफल में तेजस्वी सावंत ने रजत पदक जीता है भारत के लिए, और एथलेटिक्स में भी भारत को 2 पदक आए हैं। 3 या 4 दिनों के बाद एथलेटिक्स में पहला पदक मिला है। महिला डिस्कस थ्रो में सीमा पूनिया ने रजत पदक और नवजीत ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता है। और अभी अभी सेमीफाइनल महिलाओं के हॉकी सेमीफाइनल में भारत हार गया है ऑस्ट्रेलिया से। बहुत कड़ा मुकाबला किया उन्होंने, लेकिन जीत नहीं पाए। तो अब तक भारत के पदकों की संख्या 14 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक।
ये थे बीबीसी संवाददाता रेहान फजल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से। और अब बारी है श्रोताओं की, आपके पत्रों की,
आपकी राय। आपकी राय में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ सुमिरन, आपकी चिट्ठियों के साथ, और स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी हिंदी के एडिटर मुकेश शर्मा।
जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
नमस्कार। और शुरुआत करते हैं हाथ से लिखे हुए पत्रों से, और ये तीन तीन चिट्ठियाँ जो है ना, लिखाई से पता लग रहा है एक ही शख्स ने भेजी है। अशोक कुमार ठाकुर हैं अदलपुर दरभंगा से, जो कहते हैं कि भाई दिनांक 31 मार्च का जो रेडियो बीबीसी का कार्यक्रम था इंडिया बोल, जिसमें सीबीएसई बोर्ड पर हुई जो बहस थी वो इनको बहुत अच्छी लगी। दूसरी चिट्ठी में इन्होंने लिखा है कि दुनिया जहां में जो अमेरिका और चीन का जो ट्रेड वॉर है, व्यापार युद्ध है, उस पर जो जानकारी दी गई वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। और तीसरे पत्र में उन्होंने लिखा है कि फर्जी समाचार पर जो बहस हुई थी इंडिया बोल कार्यक्रम में 7 अप्रैल को, वो इन्हें बहुत पसंद आई।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, अशोक जी को हमारे सारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सुमिरन, तीन चिट्ठियों से आपने एक शिकायत दूर की होगी और एक शिकायत बढ़ा दी होगी। शिकायत अशोक जी की दूर हो गई कि उनकी तीन तीन चिट्ठियां शामिल हो गई आज, और दूसरे श्रोताओं की जरूर पीछे से शिकायती चिट्ठी आती होगी कि अशोक जी की क्यों 3 चिट्ठी ली गई और हमारी कोई चिट्ठी नहीं ली गई।
जी, और शिकायत का मौका नहीं देंगे, क्योंकि नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने 2 चिट्ठियां लिखी है। अच्छा। और इसमें 3 तरह की स्याही है, लाल और हरी है और ऑफ कोर्स नीली है।
क्या बात है। हाँ,
और ये लिखते हैं, दिन भर की जो दूसरी सभा थी जिसे संदीप सोनी ने प्रस्तुत किया 4 अप्रैल को, वो उन्हें बहुत पसंद आई, काफी जानकारी मिली दुनिया जहां पर इनको, और कहते हैं कि ये जो कार्यक्रम अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर है, उन दोनों देश के जो संबंध हैं, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो जानकारी मिली, वो इन्हें बेहद पसंद आई
जी। और इसी कार्यक्रम का जिक्र जो है वो अशोक जी ने भी किया था, तो ये कार्यक्रम सबको पसंद आया। नागेंद्र जी को भी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद
जी। और ये आखिरी पत्र जो है वो है विष्णु शर्मा का, फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, जो कहते हैं कि दिन भर में मिल्खा सिंह पर जो विवेचना प्रस्तुत हुई थी 30 मार्च को, वो उन्हें बहुत पसंद आई। और साथ ही वो कहते हैं, उनकी एक गुजारिश है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन पर अगर एक विवेचना सुनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो अभी तो राष्ट्रमंडल खेल चल ही रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णु जी ये जो पूरा वहाँ से गोल्ड कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया से रेहान फजल जी जितना विवरण भेज रहे हैं वो सुन रहे होंगे, वो उन्हें अच्छा लग रहा होगा। एक बार राष्ट्रमंडल खेल ये वाले पूरे हो जाएं, 21वें राष्ट्रमंडल खेल, उसके बाद जरूर इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं
जी। बिल्कुल। और अब ईमेल्स की ओर बढ़ते हैं, और पहला ईमेल हमें लिखा है गणेश प्रसाद हुजदर ने, जो लिखते हैं कि दुनिया जहां में हाल ही में संदिग्ध रासायनिक हमले के बाद दुनिया के दो ताकतवर देश रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा, उन्हें प्रस्तुति भी काफी पसंद आई। और दूसरा जो ईमेल लिखा है वो लिखा है जीशा नैयर ने, ग्राम तरैया से, जो कहते हैं कि राजेश जोशी जी हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रोग्राम करते हैं तो वक्त थम सा जाता है। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि आप महिला श्रोताओं के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन अब अगर कोई महिला भी प्रोग्राम प्रस्तुत करे तो उन्हें पसंद आएगा।
जी ज़रूर, अच्छी बात कह रहे हैं जीशान जी। हमारी पूरी कोशिश, बहुत ही हम इस चीज़ का खास ख्याल रखने की कोशिश करते हैं कि जो जो लोग रेडियो कार्यक्रम में शामिल हों, चाहे वो प्रस्तोता के तौर पे हों या वैसे भी अलग अलग हिस्सों में अपना योगदान देते हैं, उसमें महिलाओं की जो आवाज़ें हों उनको प्रमुखता से जगह दी जाए, ये हमारी कोशिश हमेशा से रही है। और जीशान जी की ये जो बात है इस पे ज़रूर एक बार नज़र रखेंगे
जी। और अगला ईमेल आया है गुड्डू गौतम का, मोतिहारी बिहार से, जो कहते हैं गोल्ड कोस्ट से राष्ट्रमंडल खेल पर रिहान फजल साहब जी की जो प्रस्तुति है वो काबिले तारीफ है, इतने कम समय में सटीक और सही विश्लेषण करना और कहीं मुमकिन नहीं सिवाय बीबीसी के।
जी रिहान जी का जो खेलों के लिए लगाव है वो एक बार फिर हम सब लोग बहुत ही जीवंत रूप में राष्ट्रमंडल खेलों से देख पा रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो पूरा जो विश्लेषण दे रहे हैं या पूरे जो घटनाक्रम है उसको बता रहे हैं। कई और ईमेल और पत्र मिल रहे हैं, संदेश भी मिल रहे हैं, जिनसे ये पता चल रहा है कि श्रोताओं को अच्छा लग रहा है, तो रेहान जी का वहाँ जाना जो है वो ऐसा लग रहा है सफल है।
बिल्कुल। पर एक सुझाव भी है जो हमें भेजा है रफीक इब्राहिम पारकर ने, रत्नागिरी महाराष्ट्र से, जो कहते हैं अगर भारतीय खिलाड़ियों के अलावा जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके प्रदर्शन पर भी अगर रिपोर्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, एक सुझाव है।
हाँ, अच्छा सुझाव है, लेकिन बात यह है कि भारतीय खिलाड़ी इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं के प्रदर्शन की चर्चा करने में समय रह जाता है इतना। जिस तरह से हर रोज गोल्ड मेडल आ रहा है, आज ही 14 स्वर्ण पदक हो चुके हैं आज तक, तो उनके बारे में भी कई बार ये होता है कि, और खासतौर पर महिलाओं को पदक मिला है, बहुत लोग जानते नहीं हैं, तो इसलिए हमारी बहुत ही खास कोशिश है कि बहुत सारे खेल हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, पर क्रिकेट हुआ या हॉकी को भी कुछ हद तक लोग अभी याद रखे हुए हैं, पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पर्दे के सामने उतनी चकाचौंध में नहीं आते हैं, तो उनको, उनके बारे में बताना और उनके बारे में हमारे श्रोता जाने और वो किस तरह से एक प्रेरणा के केंद्र बन रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि उसके बारे में जाना जाए।
आज के लिए इतना ही आपकी राय में।
और चलते चलते श्रोताओं को पता बता दें, आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3005, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है
hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और इससे पहले कि भारत में बजे रात के 8, हम आपसे लें विदा, चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं रजनीश कुमार से।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया पर हमला जल्द होगा या तत्काल नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वाशिंगटन में एक अहम बैठक से पहले ट्रंप ने ट्वीट कर ये बातें कही हैं। रूसी सैनिकों का कहना है कि सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले आखिरी शहर डोमा में भी सीरियाई राष्ट्रध्वज लहरा दिया गया है। चीन के नेता सुन जनगसी को अदालत ने सत्ता का दुरुपयोग कर $2,70,00,000 जमा करने के मामले में दोषी ठहराया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम, और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। अगला प्रसारण समय जानते हैं आप भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।